శ్రీమద్ భాగవతం ద్వితీయ స్కంద అధ్యాయ 8 శ్లోక క్రమాంక్ 2 ఏతద్వేదితుమిచ్ఛామి తత్వం తత్వవిదాం వర హరేర్ అద్భుతం వీర్యస్య కథాలోకసుమంగళాః. अनुवाद. राजा ने कहा, यानी परीक्षित महाराज ने, मैं जानने का इच्छुक हूं अद्भुत शक्तियों से संपन्न भगवान से संबंधित कथाएं निश्चय ही समस्त लोकों के प्राणियों के लिए शुभ है. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रीमद् भागवत परमेश्वर की लीलाओं के वर्णनों से भरा पड़ा है और प्रत्येक लोक में निवास करने वाले जीवों के लिए मंगलकारी है. जो इसे संप्रदाय विशेष मान बैठता है वह निश्चित रूप से भ्रम में रहता है. श्रीमद् भागवत भगवान के समस्त भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय शास्त्र है, लेकिन अभक्तों के लिए भी यह कल्याणप्रद है, क्योंकि इसके अनुसार भौतिक शक्ति के चक्कर में पड़े हुए अभक्त लोग भी चंगुल से छूट जाते हैं यदि वे श्रद्धा तथा मनोयोग से शिष्य परंपरा से समुचित स्रोत से श्रीमद् भागवतम की कथा को सुनते हैं. हरे कृष्ण. आज के इस रविवार के सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है. प्रभुपाद जी की अहेतु की कृपा से उन्होंने ये सुंदर एक तरीका हमें दिखलाया जहां पूरे भक्त परिवार एकत्रित होकर भगवान का गुणगान कर सकें और अपने हृदय की शुद्धिकरण साथ साथ में कर सकें. ये प्रभुपाद जी की बड़ी निपुणता है, बड़ी दक्षता पूर्वक उन्होंने इस संस्था के भक्तों के लिए एक ऐसा एक कार्यक्रम प्रदान किया है जहां आंख बंद करके हम भागेंगे तो भी कोई डर नहीं. एक ऐसा हाईवे है जहां आप आंखें बंद करके भागेंगे तो भी एक्सीडेंट की संभावना नहीं है. दूसरी जगह आंख खोल के ध्यान पूर्वक सतर्क रहेंगे तो भी एक्सीडेंट हो जाता है. पर जब दशम स्कंद में भागवत में एक सुंदर श्लोक है, स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन भवार्णवम भीमम अदभ्र सौहृदाः, ये श्लोक कहता है कि वो भगवान के महान भक्त स्वयं समुत्तीर्य, जिन्होंने इस भवसागर को पार कर लिया है, सुदुस्तरम, जिसको पार कर पाना मम माया दुरत्य बहुत मुश्किल है. भवार्णवम, भव अर्णव, ये सागर जो जिसकी जो लाट है, जिसकी जो लहर है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के लहरों में का जो भव सागर, भवार्णवम भीमम, बहुत ही तीव्र है, ये शक्तिशाली है, पर अदभ्र सौहृदाहा, सौहृदा मतलब सुहृद, भगवान है सुहृद, सुहृदम सर्वभूतानां, पर दूसरे सुहृद कौन है? जो व्यक्ति अपना सर्वस्व दूसरों को भगवान के साथ संपर्क दिलाने में प्रयास करते हैं, क्योंकि एक ही सुहृद है भगवान, सुहृदम सर्वभूतानां, केवल वो ही व्यक्ति है जो हमको भगवान से, इस भौतिक संसार से हटाकर उनके चरणों में आश्रय दे सकते हैं। और वो व्यक्ति जो हमें ऐसे अपने सुहृद मित्र से जुड़वाता है, वो भी हमारा शुभ चिंतक है। प्रभुपाद हमेशा अपने चिट्ठी लिखने के बाद साइन करते थे नीचे, योर एवर वेल विशर, आपका नित्य या शाश्वत शुभ चिंतक, केवल इस जन्म के लिए नहीं, चक्षुदान दिलोजई जन्मे जन्मे प्रभु से। जब तक आप भगवत धाम नहीं जाएंगे तब तक वो पीछे पड़ के आपको खींचते रहेंगे किसी न किसी तरह से, किसी न किसी तरह से रूप में आके। तो वो तो पार कर गए, पर जाने से पहले हमारे लिए उन्होंने एक नाव छोड़ गए जिसके द्वारा उन्होंने पार किया। वो तरीका जिसको अपनाकर वे पार किए इस संसार को, वो तरीका हमारे लिए छोड़ जा रहे हैं। और वो तरीका कैसा है? वो नाव जैसा है। और वो नाव क्या है? वो नाव है ये ग्रंथ, उनके दिए हुए ग्रंथ, और इस ग्रंथ के द्वारा दिए हुए वो नवदा भक्ति का कार्यक्रम, एक सुंदर कार्यक्रम बना के दे दिया है हमारे लिए। बस इस कार्यक्रम को अपनाओ श्रद्धा पूर्वक, एकाग्रता के साथ, तीव्रता के साथ, भक्तिमय भाव से, और निश्चित रूप से आप यशस्वी होगे। क्यों? क्योंकि भगवान और भक्त दोनों मिलके ये कार्यक्रम बनाए हम जैसे बद्ध जीवों को लाने के लिए। जैसे मां और बाप दोनों मिलकर हमेशा सोचते रहते हैं हमारे बच्चों को अच्छी तरह से कैसा पढ़ा लिखा कर अच्छा स्तर पर, हमेशा योजना वही रहता है उनका, सोच ही रहता है हमारे बच्चों को सबसे अच्छा कैसे दे सके। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, कृष्ण और गुरु दोनों मिलकर योजना बनाते रहते हैं हमेशा, ये हमारे बच्चे जो पथभ्रष्ट हो रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, इनको स्कूल में जाने की इच्छा नहीं है, होमवर्क करने की इच्छा नहीं है, पुस्तक देख के भाग जाते हैं, इनको कैसे धीरे 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 ए ग्रेड में पास करा के, एंट्रेंस एग्जाम में पास करा के, अच्छा ग्रेजुएशन पास करा के एक अच्छे स्तर पर स्थिर कराए। और ये जो है आज जो यहां हम लोग बैठे हुए हैं, ये संडे लव फीस्ट प्रोग्राम ऐसा शुरू हुआ था अमेरिका में, संडे लव फीस्ट इसका शुरुआत, रविवार का प्रेम भोजन। रूप गोस्वामी कहते हैं, अभी हम लोग उपदेशामृत के बारे में चर्चा कर रहे थे, ददाति प्रतिगृहणाति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम्। तो ये प्रभुपाद जी की खास कृपा है कि उन्होंने एक ऐसा सुंदर कार्यक्रम, सिर्फ हमको अभी चलना है उस कार्यक्रम के अनुसार। और क्यों बोले, कम से कम हफ्ते में एक बार आया करो, एक्चुअली हर रोज आना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, ए फैमिली दैट प्रेस टुगेदर स्टेज टुगेदर, वो परिवार जो साथ में आकर भगवान को पूजता है हमेशा साथ में रहता है। इसी तरह से हमारे संपूर्ण कोल्हापुर का भक्त परिवार प्रभुपाद जी की कृपा से अगर हर हफ्ता एकत्रित होते रहेंगे और ये छह प्रकार का प्रेममय आदान प्रदान करते रहेंगे, तो तो निश्चित रूप से साथ में प्रगति करेंगे और आपस में तीव्र घनिष्ठ प्रेममयी कृष्ण केंद्रित संबंध स्थापित हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण ही एक ऐसा क्या बोलते हैं क्विक फिक नहीं क्या बोलते हैं चिपकाने वाला फेविकोल। हाँ, आज के संबंध जो हैं उनको चिपके रहने के लिए फेविकोल चाहिए। ऑफ कोर्स ये लकड़ी को कांच को इन चीजों को चिपकाने के लिए फेविकोल, एक बार चिपक गया तो निकलना नहीं चाहिए। तो हमारे आपस की जो संबंध है ये कौन सा फेविकोल है जो चिपका के रखता है? आजकल जो भी चिपकाया 3 दिन के अंदर खुल जाता है फिर से, एकदम घनिष्ठ संबंध भी आज एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार है, महीने भर में जान लेने के लिए तैयार हो जाते। कृष्ण ही एक ऐसे फेविकॉल है, कृष्ण सेवा, कृष्ण नाम, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा और सबसे सुंदर कृष्ण प्रसाद। ये अगर साथ में करते रहेंगे तो कैसा भी एकदम रफ सरफेस क्यों ना हो चिपक जाएगा, अगर नहीं तो कितना भी चिकना हो जुड़ेगा नहीं। तो कृष्ण वो फेविकोल है, दिव्य फेविकोल, जो हमारे संबंध टूटे हुए संबंध को जोड़ सकता है। पच्चीस जनवरी को भक्तिवेदांत अस्पताल बंबई में, जो भक्तों के द्वारा यह अस्पताल चलाया जा रहा है, वहां मैं गया था। परम पूज्य महाविष्णु स्वामी महाराज, उनके तिरोभाव का पहला साल, क्योंकि 25 जनवरी 2009 2010 में भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। महाविष्णु स्वामी महाराज 91 साल के थे, 91 ईयर्स। चाहे तो नासिक जा सकते थे, उनमें उनको नासिक जाने की बहुत इच्छा थी, मायापुर जा सकते थे, वृंदावन जा सकते थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, नहीं। उनको दवाई और अस्पताल से द्वेष था, दवाई वाई कभी कुछ नहीं लेते थे, वो डांटते थे सब डॉक्टरों को नर्सों को, बोले यमदूत जैसे हो तुम लोग आ जाते हो। पर जब वो भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में आए बोले ये तो धाम है, क्योंकि यहां डॉक्टर सर नर्स सब एकदम तिलक विलक पहन के आते हैं और हमेशा प्रभुपाद जी का कैसेट चलता रहता है, दो चैनल है, एक चैनल घुमाया तो प्रभुपाद जी का प्रवचन, दूसरा घुमाया तो उनका कीर्तन 24 घंटा, जगन्नाथ जी का रथ आता है, छोटा रथ सब पेशेंट के पास आता है, कोई भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, जब बीमार पड़ जाता है तो भगवान समझ में आता है एक ही है वो, पिता एक ही है हमारे, नहीं तो हमारा मन इधर उधर जाता है। आते हैं तो फूल देते, फूल चढ़ाते, भगवान को प्रणाम करते, थोड़ा प्रसाद ले ग्रहण करते। वो परम वैद्य हैं, वो विजिट करने आते सबको, सारे मरीजों को। जगन्नाथ जी अपने बड़े बड़े आंखों से कृपा दृष्टिपात करते, आप लोग सब अनुभव किए होंगे कल सुंदर जगन्नाथ रथ यात्रा बेलगाम में, काफी बड़े पैमाने पे बहुत सुंदर से ऑर्गेनाइज करते वो लोग। वो भी प्रभुपाद जी का एक दूसरा कृपा का देन है, कृपा का बारिश वर्षा। तो उन्होंने वो बोला कि नहीं मैं यहीं शरीर छोड़ूंगा, मेरे लिए ये भी एक धाम है। तो उनके शिष्य वहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि पहला जो साल है महाराज के तिरोभाव का वो वहीं मनाएंगे, तो वहां आए हुए थे। उनके एक शिष्य हैं देवकी नंदन नाम के, सिंगापुर में रहते हैं वो। उन्होंने एक छोटा सा क्लास दिया और महाराज के बारे में बता रहे थे। मुझे 45-50 मिनट का क्लास सुनकर इतनी प्रेरणा मिली मुझे प्रभुपाद जी के ग्रंथों के बारे में, खास करके श्रीमद् भागवतम के बारे में, कि मैंने सोचा आपके सामने भी कुछ जो मैंने सुना उसके मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले। महाविष्णु महाराज गुजरात के थे और बड़ा परिवार, 8 लोगों का परिवार था, सब बहनें थी, सबसे बड़े यही थे। उनके पिता, मतलब 8 पीढ़ी उनकी पुष्टि मार्ग के वैष्णव थे और भागवत वागत में बहुत इच्छा। उनके पिताजी भी महान राम भक्त थे, छोटे उम्र में वो मंदिर में जाके निवास करते थे, जल्द ही उन्होंने भगवान की सेवा में बहुत लग गए थे। तो सारा जिम्मेदारी जो था महाराज जी पे पड़ा, तो कम उम्र में उनकी विवाह भी हो गया था, वो उनकी लड़कियां भी थी, उनके बहनें थी, सबका जिम्मेदारी उन्होंने निभाया, शादी कराना, उनको सेटल करना। लंदन में थे वो 1973 में, 1973 गुजरात सभा जो थी लंदन की उसके वो अध्यक्ष थे। तो उन्होंने अब सभा की ओर से उन्होंने प्रभुपाद जी को बुलाया प्रवचन के, पता चला था कि एक बहुत बड़ा स्वामी जी हैं, गीता भागवत का प्रचार करते हैं, पाश्चात्य देश के शिष्य भी हैं उनके, लंदन में आए हुए हैं। तो उन्होंने उनको बुलाया, बोले हमारी संस्था गुजराती संस्था के लिए आप आइए और थोड़ा प्रवचन दीजिए। तो प्रभुपाद जी आए और उस एक प्रवचन के कुछ वाक्यों से महाविष्णु महाराज के ऊपर, उस समय महाविष्णु महाराज नहीं थे वो, उस समय गृहस्थ थे वो, इतना प्रभाव पड़ा उन पर कि उन्होंने आध्यात्मिक जीवन को बड़ी गंभीरता से लेने का निर्णय लिया और सोहो स्ट्रीट लंदन में, जहां राधा लंदनेश्वर, सर्वप्रथम राधा कृष्ण की मूर्ति जहां प्रभुपाद जी ने स्थापित किया था, वहां आने लगे। और अपनी सारी जिम्मेदारी निभाने के बाद उन्होंने समझा मैं अभी वानप्रस्थ लूंगा और मंदिर गए 1977-78 में शायद। और उन्होंने कहा मंदिर के अध्यक्ष से कि मैं यहां सेवा करना चाहता हूं। पर उस समय थोड़ा हाथ पैर उनका काम नहीं कर, कुछ तो बीमार थे वो, ज्यादा देर खड़े भी नहीं हो सकते थे, हाथ पैर ठीक से चलता नहीं था। तो मंदिर के अध्यक्ष ने बोला तुम क्या सेवा कर सकोगे, कोई पुस्तक वितरण तो नहीं कर पाओगे, उतना उठा नहीं पाओगे वजन, आरती भी नहीं कर सकते क्योंकि 20 मिनट एक जगह तुम खड़े नहीं हो सकते। आप एक काम करो, आप बैठो और भागवतम पढ़ो बस। तुम्हारा ने सोचा यही तो मैं चाहता था, बहुत समय से भागवतम अध्ययन करने की बहुत इच्छा थी। सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक मंदिर के एक बड़ा स्तंभ था वो खंबा, खंबे के सामने बैठ जाते थे लेट टेक कर, 12 घंटा हर रोज पढ़ाई करते थे भागवत, बीच में प्रसाद के लिए जाते थे आते थे, यही उनका सेवा था 9 साल तक लगातार। आज भी अगर आप जाएंगे सोहो स्ट्रीट के मंदिर में राधा लंदनेश्वर में और भक्तों से पूछोगे महाविष्णु महाराज का खंबा कौन सा है, ओ ये खंबा, वो दिखा दे महाविष्णु महाराज का खंबा, जैसे नरसिंह देव का खंबा है ना वैसे, बोले महाविष्णु महाराज का खंबा। उस खंबे, उनका एक फिक्स जगह था, वहां बैठ जाते थे सुबह से शाम तक। और उन्होंने ऐसा 50-60 डायरी भर भर के नोट्स निकाला उसमें। एक दिन कोई नहीं था भागवतम क्लास के लिए, तो वो अध्यक्ष ने बोला एक काम कर प्रभु जी आप दे दो। तब तक उन्होंने क्लास नहीं लिया था, बोले आप क्लास दे दो आज, कोई नहीं है। 9 साल का अध्ययन पूरा फर्स्ट क्लास, 50-50 बुक में नोट बनाए। जब वो बोलना शुरू किए तब से कभी रुके ही नहीं, मंदिर के अध्यक्ष बोले आप रेगुलरली दिया करो क्लास। उसके बाद भक्ति वेदांत मैनर लंदन में, वहां बुलाने लगे, वहां से यूरोप, यूरोप से जर्मनी, इधर सब जगह उनको बुलाने लगे। बोले एक बड़े वरिष्ठ वैष्णव है यहाँ, बहुत सुंदर भागवत कथा देते हैं, बहुत अच्छा से समझाते। फिर वो भ्रमण करने लगे, फिर उन्होंने संन्यास लिया। तो इनके शिष्य बता रहे थे कि जो भी उनके शिष्यों को जो भी अब देखोगे उनको एक चीज तो निश्चित था, जैसे चार नियमों का पालन करने को प्रण लेते हैं ऐसा, बोले भागवतम तो पढ़ना, भागवतम भागवतम भागवतम। किसको भी मिलते थे और कभी भी प्रवचन भी दे देते तो घंटे घंटे बोल सकते भागवतम, ओनली भागवतम। चलते फिरते भागवत थे वो, एक रूप में देखा जाता सचमुच में। उन्नीस सौ बयानबे या तिरानबे में एक बार राधा गोपीनाथ मंदिर में आए थे, आए बैठे, बैठने के बाद राधा माधव एक घंटा गाया उन्होंने, उसके बाद दो घंटा क्लास दिया, तीन घंटा भागवत, बहुत मधुर बहुत सुंदर गाते थे, एक एक श्लोक को भी इतने सुंदर राग से गाते थे वो। एक बार सुन लिया तो फिर बार बार सुनने का दिल होता। फिर हमारे लिए ब्रह्मचारियों के लिए क्लास लिया उन्होंने, तो ब्रह्मचारी में क्लास में आ गए और बहुत मतलब हंसी मजाक से करते थे वो, उनका बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर जो था बहुत ही तीक्ष्ण था वो। तो ब्रह्मचारी क्लास में आए, सब हम लोग ब्रह्मचारी लोग बैठे हुए थे, तो बोले आप लोग सब ब्रह्मचारी हो? बोले हाँ। तो किसी ने पूछा महाराज ब्रह्मचारी के लिए हमको क्या करना चाहिए ब्रह्मचारी अच्छा बनाने रखने के लिए? बोले तुरंत शादी कर लो। सब हिल गए, बोले अगर शादी नहीं करोगे तो शादी करना ही पड़ेगा आपको, तुरंत शादी करो भागवतम के साथ। बोले नहीं तो इस ब्रह्मचारी आश्रम का जो दीवाल है तुमको निगल जाएगा, अकेलापन महसूस होगा तुमको, पचास लोगों के बीच में रहकर भी अकेलापन महसूस होगा, क्यों? क्योंकि हर एक जीव रस की खोज में है, संबंध प्रेम की खोज में, हर एक जीव प्रेम का भूखा है, प्रेम चाहिए। और प्रेम के अलग अलग रस होते हैं, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, दास्य रस, साख्य रस, अद्भुत रस, वीर्य रस, बाला, अलग अलग प्रकार के रस, हर एक व्यक्ति रस के है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अगर ऊंचे रस का आस्वादन नहीं मिलेगा तुमको तो इस दुनिया के नीचे रस के पीछे तुमको ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति भूखा है, प्यासा है, ऐसा रह नहीं सकता, उसको चाहिए ही रस चाहिए। तो रस का खोज में हर एक व्यक्ति रस के खोज में है, संबंध के खोज में है, प्रेम के खोज में, प्रेममय प्रेममय रस। हर एक रिश्ते में एक मधुर माधुरी होता है, उसमें एक मिठास होता है, है कि नहीं? गन्ने का रस, आम का रस, नींबू का रस, हर एक का अपना अपना एक टेस्ट होता है। एक ही रस खाते हर रोज पीते रहोगे क्या? सिर्फ राइस खाने का, सिर्फ राइस खाने का, अरे कुछ सब्जी भी दो ना, थोड़ा आचार भी हो जाएगा तो अच्छा है, और बीच में सब्जी भी दो प्रकार के होंगे तो, चार प्रकार के होंगे तो और भी अच्छा है, और साथ में अगर पापड़ हो जाए तो क्या कहना। इस तरह से अलग अलग प्रकार के रस का आस्वादन करना चाहता है व्यक्ति, और वो रस श्रीमद् भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भूमि भाव का। जो रसिक भक्त हैं, जो सचमुच में रस चाहते हैं, कैसा रस? भक्ति रस अमृत, ये अमृत रस है, ये मरने वाला रस नहीं है, रोमियो जूलियट का रस नहीं है, हीर रांझा या लैला मजनू का रस नहीं है, ये वो भी गई ये भी गए रस भी गया। भक्ति रस अमृत, ये अमृत रस है, यह आस्वादन हमेशा मिलता रहेगा। रसनालयम, रस का आलय है ये। खास करके इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोले, पता नहीं मैं वृद्ध अवस्था में हूं कब, कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कहते हैं ना, मैं बहुत बूढ़ा हूं, पता नहीं कब चला जाऊंगा। इसीलिए मैं पहले ही स्कंद में, पहले ही आदि लीला में सब जो जो मैं लिखने वाला हूं थोड़ा संक्षिप्त रूप में बता दूंगा, ये दीर्घ होता जा रहा है। इस तरह से प्रभुपाद जी ने बोले, पता नहीं कितना स्कंद खत्म कर पाऊंगा, इसीलिए मैं दशम स्कंद पहले ही दे रहा हूं कृष्ण बुक के रूप में, क्योंकि ये तो रसराज कृष्ण है। कृष्ण के साथ संबंध का जो रस जिसने आस्वादन कर लिया, वो इस कलयुग में बिना दूसरे कोई रस के प्रगति कर सकता है, अपना बुद्धि का जो सैनिटी, ये तो आदमी पागल हो जाएगा। तो उनका कहना था ब्रह्मचारियों को, बोले ब्रह्मचारी है तुरंत शादी करो, भागवतम के साथ विवाह करा लो बस। और विवाह कर लिया उसके बाद निष्ठा होनी चाहिए, पातिव्रत्या, इधर उधर देखना नहीं। शादी से पहले एक स्त्री जो है हर एक पुरुष को थोड़ा परखती है, ये योग्य होगा, नाक लंबा है, ये कान छोटा है, ये तो थोड़ा, ये ऊंचा है पर कमाता कम है, ये बाल ही नहीं है। इसी तरह से पुरुष भी कई स्त्रियों को देखता है, ये अच्छी है, ये अच्छी, ये हो सकती है, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं। पर एक बार विवाह होने के बाद व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन, निष्ठा पूर्वक उस व्यक्ति की सेवा, और इधर उधर परखने की जरूरत नहीं है, हो गया। त्वयि मे अनन्य विषया मतिर मधुपते असकृत रतिम उद्वहता मद्धा गंगई व उघम उदनवती, यही चाहती है कुंती देवी। कुंती देवी भागवतम के प्रथम स्कंद के आठवें अध्याय में अपनी जो प्रार्थना करती है, त्वयि मे अनन्य, अनन्य का मतलब क्या है, अन्य किसी के में मुझे देखना नहीं है, आपके प्रति मेरा, जैसा गंगा बिना रुके जब तक समुद्र तक नहीं जाती तब तक कितना भी बाधा आ जाए घूम फिर के समुद्र तक पहुंचती है, ऐसे प्रभु मति, मेरी मति, मेरी चेतना, मेरी भावना जो है जो रस के खोज में है, त्वयि मे अनन्य विषया, त्वयि मे केवल आपके चरण कमलों, इसको कहते हैं निष्ठा, एक फेथफुल एंड चेस्ट डिवोटी, चैस्टिटी समझते हैं पातिवृत्य। फिर एक अच्छी बात एक बार बोले उन्होंने, दूसरी जगह बोले, कृष्ण हमारे पति हैं, क्यों, वो ही हमारे अंतिम गति है, और इसीलिए उनमें अगर मति लगाओ तो रति पैदा होगा, नहीं तो बहुत सारे पति को हम ढूंढते हैं, हमें आश्रय देने वाले पति, लोकपति, प्रजापति, धियापति, सात्वताम पति, प्रजापति, वही पति सात्वताम पति ही, वही एक पति हैं जो सचमुच में हमारा संरक्षण कर सकते हैं, और वही हमारे गति हैं। संबंध ज्ञान, एक बार संबंध ज्ञान हो गया, संबंध स्थापित हो गया हमारे परम पति, हमारे परम गति की ओर, फिर अपनी मति, त्वयि मे अनन्य विषया मति ही, अब मेरी मति मेरे पति और मेरे अंतिम गति की ओर ही लगे रहे, जब ऐसे लगेगी रतिम, उस समय रति उत्पन्न होगा, जहां मति जाएगी वहां रति बढ़ेगी। आप सोचो, जहां आपकी चेतना जाएगी, वेयर देर इज अटेंशन देर इज अट्रैक्शन, जहां ध्यान ज्यादा जाएगा वहां इच्छा बढ़ेगी, रति बढ़ेगी। तो महाराज जी का कहना था, भागवत में रति डालो अपना मति, भागवत में अपना मति डालो, फिर रति उत्पन्न होगी। ध्यान पूर्वक
जिस प्रकार पति परीक्षित महाराज ने यहां कह रहे हैं, मैं जानने का इच्छुक हूं, एतद वेद तुम इच्छामि तत्वम तत्वविदाम वर हरेर अद्भुत वीर्यस्य। हरि के सुंदर कथा अपने भक्तों के साथ किस तरह से वो प्रेम में आदान प्रदान करते हैं, ऐसे व्यक्ति को जानने के बाद कौन ऐसा मूर्ख होगा और कहीं ढूंढेगा, अन्य जगह हमारी मति क्यों जाएगी? अगर जा रही है इसका मतलब अपने पति और परम गति को समझा ही नहीं हमने। कृष्णे सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदित। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण कलयुग से कलयुग के शुरुआत में चले गए, जिस दिन कृष्ण का सूर्यास्त हुआ उस दिन दूसरा सूर्य वहां निकला, अधुना उदित, और वो है श्रीमद् भागवतम रसमालयम। कृष्ण में और भागवतम में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह एक पतिव्रता स्त्री का केवल अपने पति की ओर अपनी पूर्ण रूप से ध्यान रहता है और इस तरह से रति बढ़ता है, सेवा बढ़ता है, इस तरह से महाराज जी का कहना था कि हमें भागवतम में ध्यान देना चाहिए, अपना मति लगाओ, मति लगाओ, मति लगाओ, मतलब स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। संबंध चाहते हो तो थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, किसी के साथ भी संबंध चाहते हो तो थोड़ा क्वालिटी समय निकालना पड़ेगा। बिना समय निकालने प्रेम करता हूं, प्रेम, अरे क्या प्रेम है, समय नहीं तेरे लिए मेरे लिए, कैसा प्रेम? किसी के साथ भी रति उत्पन्न होना है, प्रेम उत्पन्न होना है तो थोड़ा क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा, तब संबंध बढ़ता है। तो मति को लगाओ भागवतम में, तब एक दिन रति उत्पन्न होगी और एक बार वो प्रेम उत्पन्न हो गया, प्रेमापमार्थो महान, फिर अनन्य विषया अन्य ओर नहीं जाएगी, अनन्य भक्ति बढ़ेगी। उनके शिष्य क्लास में बता रहे थे कि महाराज जी ने उनको कहा कि मैं तुम लोगों को एक टेस्ट देता हूं, टेस्ट मतलब परीक्षा, जिसके द्वारा पता लगते हो, पता कर सकते हो कि भागवतम के साथ आपका संपर्क है या नहीं, संबंध हुआ है या नहीं, मतलब संबंध सुपरफिशियल नहीं, ऊपरी ऊपरी संबंध नहीं, सचमुच में संबंध हुआ है क्या नहीं, इसकी दो टेस्ट है, लिटमस टेस्ट परीक्षा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, क्या बीमारी हो गया, स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, टेस्ट करने से पता लगता है कि बीमार हुए हो या नहीं हुए हो। इसी तरह से भागवतम के साथ आपका संबंध हुआ है कि नहीं, दो टेस्ट, ये स्टूल यूरिन टेस्ट नहीं, ये दूसरा टेस्ट है। बोले पहला टेस्ट क्या है, पहला परीक्षा क्या है, कि तुम भागवतम के संपर्क में हो। इस जीवन में क्या तुम संतुष्ट हो, जिस स्थिति में भी भगवान ने तुम्हें रखा है वहां क्या तुम संतुष्ट हो? अगर हृदय में संतुष्टि नहीं है इसका मतलब भागवतम से आपका संपर्क नहीं है। असंतुष्टि का कारण है भगवान के साथ हमारा संपर्क स्थापित नहीं हुआ है। ये उनका पहला टेस्ट था अपने शिष्यों के लिए, सचमुच में तुमको भागवतम में रस आ रहा है, संतुष्टि है क्या तुम्हारे जीवन में? श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विधूनोति सहृत्सताम। अगर श्रृण्वताम बार बार भागवतम का श्रवण करेंगे तो हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी, एक लोहे का टुकड़ा चुंबक के साथ आकर्षित होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से आकर्षित होना चाहिए। अगर आकर्षित नहीं हो रहा है इसका मतलब थोड़ा जंग पड़ गया है, जंग पड़ा हुआ लोहा का टुकड़ा चुंबक से आकर्षित नहीं होता और उसको चुंबक को क्या बोलते हैं, जंग निकालने के लिए उसको घिसना पड़ता है। श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण, बार बार भागवतम का श्रवण करेंगे तो हृदयंतस्थो ही अभद्राणी, हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह का जो जंग पड़ गया है, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम ऑलरेडी है हमारे हृदय में, पर इसके ऊपर जंग पड़ गया इसीलिए वो कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं हो रहा है, विधु नोति, धूल जाता है वो, जितना धूल जाता है सारे अनर्थ नष्ट प्रायेषु अभद्रेशु, कब? नित्यम भागवत सेवया, नित्यम रेगुलरली डेली हर रोज। तो महाराज जी का कहना था कि अगर आप हर रोज भागवतम के संपर्क में रहोगे तो नित्यम भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी, निष्ठा बढ़ेगी तब, क्योंकि हर रोज संबंध रखने, हर रोज संपर्क रखने से संबंध बढ़ेगा, संपर्क रखोगे तो संबंध बढ़ेगा, संबंध बढ़ेगा तो प्रेम बढ़ेगा। तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्च ये चेत एतैर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। और जब काम क्रोध लोभ जिसके कारण हम असंतुष्ट हैं, किस स्थिति में भी डालो, काश मेरे पास ये होता वो होता, ये जो है ये ऐसा नहीं होता वो ऐसा होता, काश मेरे बाल थोड़े काले होते, काश मेरा हाइट थोड़ा लंबा होता, न शोचती न कांक्षती, आकांक्षा करने में या शोक करने में क्या नहीं है मेरे पास, और क्या अभी भी नहीं हो ये होता तो कितना अच्छा होता, प्रसन्न आत्मा नहीं है, प्रसन्न नहीं है। तो पहला भागवतम के संपर्क में आने का लक्षण है संतुष्टि आती है अपने जीवन में, कृतज्ञता पूर्वक, जो भी है भगवान प्रभु धन्यवाद, मैं इसका भी योग्य नहीं हूं, कम से कम आपने इतना दिया है, ना कि हमेशा कंप्लीट ये नहीं ये दो पूरा लिस्ट लेके भगवान के सामने जाना हर रोज। सिदम सत्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते। तो ये संतुष्ट, इस संतुष्ट भावना से जब हम भगवत, नहीं तो निश्चित रूप से भागवतम के पास भी जाएंगे, भगवान के पास भी जाएंगे तो केवल मांगने के लिए जाएंगे, हम भगवान के पास मांगने के लिए नहीं आना चाहिए ये दो वो दो, अरे उनको मालूम है क्या देना चाहिए। एक छोटा बच्चा बाप के पास आता है, अब पापा कल सुबह मेरे को ब्रेकफास्ट मिलेगा क्या, दोपहर को लंच मिलेगा ना, शाम को डिनर भी होगा क्या, अरे रास्कल मैंने तेरे को पैदा किया, मैं भूखा रहूंगा तेरे को खिलाऊंगा, इतना टेंशन क्यों है तेरे को, योगक्षेमम महाम्यहम, मैं हाथी को खिलाता हूं, ओ छोटे छोटे चींटियों को खिलाता हूं, सबको खिलाता हूं मैं, तेरे को नहीं खिलाऊंगा, नहीं नहीं विश्वास नहीं है। तो जनरली हम लोग उसके उसलिए ही जाते हैं। तो अब जब जाएंगे, जब संतुष्टि होगी प्रसन्न मनस के साथ, फिर जब जाएंगे एवं प्रसन्न मनस हो भगवत भक्ति योगतः, फिर हमको न धनम न जनम न सुंदरीम कविता मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहितुकी, इस भावना से जब आएंगे तो निश्चित रूप से दूसरा तो देना देंगे देंगे, वो कृष्ण प्रेम भी देंगे। तो सबसे पहले उनका कहना था कि संतुष्टि। अच्छा, और दूसरा टेस्ट क्या है, दूसरा परीक्षा क्या है, भागवतम के संपर्क में हो या नहीं, आप कितने जल्दी विचलित हो जाते हो, एजिटेटेड, थोड़ा भी कुछ हो गया तो विचलित हो जाते, ऐसा एक छोटा सा है, मतलब बर्तन में क्या पानी है और उसमें थोड़ा हिला दिया आपने तो सब हिल जाता है पूरा, तो कितना जल्दी आप विचलित हो जाते, विचलित हो रहे हो इसका मतलब थोड़ा कमी है कहीं, तो भागवत के संपर्क में आप नहीं हो। नहीं तो ऐसा व्यक्ति विचलित नहीं होना चाहिए. ऑफ कोर्स इतना विचलित होना कि हम भगवान की भक्ति से दूर चले जाते. कभी कभी हम देखते हैं भक्तों के जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है, थोड़ा विचलित हो जाते हैं पर भक्ति से कभी छूटते नहीं है. हम इतने विचलित हो गए कि माला को हमने टंग दिया, बस अभी नहीं करना, कृष्ण हरे कृष्ण बहुत हो गया. तो ये दो प्रकार के और एक उनका कहना था जो मुझे बहुत अच्छा लगा. उन्होंने कहा कि अगर भागवतम के साथ आपको संपर्क रखना है, भक्तों की निंदा करना छोड़ दो. निरपराधे नाम लोए पाए प्रेम धन. वो कहते थे इट सीम्स के आप लोग मांसाहार तो बंद कर दिए, बहुत बड़ा काम किया आपने. आपको लगता है कि मांसाहार बंद कर दिया, विचार नहीं, मांसाहार नहीं, नचा नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं, अभी तो पूर्ण शुद्ध भक्त हो गया. अरे मांसाहार तो बंद किया पर तुम्हारे मुंह को तुमने कत्ल खाना बना दिया. बोले क्यों मुंह को कत्ल खाना कैसे बनाया? बोले जिह्वा के तलवार से ऐसे शब्द निकालते हो जो भक्तों के हृदय को टुकड़े टुकड़े कर देता है, काट काटते रहे हो. बोले तुम्हारे मुंह को तुमने कत्ल खाना बना दिया और उसी मुंह से तुम भागवतम पढ़ोगे, कैसे भगवान आकर्षित होंगे, कैसे भगवान आएंगे तुम्हारे पास. महाप्रभु का भी यही कहना था, निरपराधे नाम लय पाए प्रेम धन. मतलब बेसिकली क्यों ये निंदा करने की प्रवृत्ति कैसे आती है? नारद मुनि कहते हैं ध्रुव महाराज को, चौथे स्कंद में आप देखेंगे ध्रुव महाराज की जब आख्या होती है, ध्रुव महाराज विचलित हो जाते हैं. सुनीति जब, सुरुचि जब उसको कहती है कि मेरे तुम्हारे पिता के गोद में नहीं बैठ सकते, गुस्से होकर वो चले जाते, ध्रुव महाराज चले जाते, इतने विचलित हो जाते हैं. तब नारद मुनि उनको जंगल में जाते रहते सुनीति के कहने पर, अपनी मां के कहने पर. तब बहुत सुंदर बोलते हैं नारद मुनि, अरे अभी बच्चे हो, अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, कोई कुछ कह भी देता है तो बुरा नहीं लेना चाहिए, बच्चों को कोई गाली भी दे, गधा कहीं का वो हंसता है, उसको नहीं समझता है, बोला कुछ बोल दिया है छोड़ दो. ध्रुव महाराज बड़े दृढ़ पूर्वक कहते हैं नहीं मेरे को करना है. तो वो कहते सुनो, अगर बिना कोई विचलित भाव के अगर तुम रहना चाहते हो तो बोले तीन चीज करो. गुणाधिकार, तुमसे अधिक गुण वाले, तुमसे वरिष्ठ गुणों में, उम्र में, जो भी हो, तुमसे जो बड़े हैं उनका गुणगान करो. तुम्हारे जो समान के लोग हैं उनके साथ मैत्री करो, और तुमसे जो निम्न श्रेणी पे हैं, कनिष्ठ, उनके साथ उनको दया दिखाओ. पर हमारा क्या होता है, हमसे जो ज्यादा गुणवान हैं उनके साथ हमारी ईर्ष्या आ जाती है. ईर्ष्या भाव अगर हृदय में होने के कारण, मुख्य रूप से वो ईर्ष्या भाव, इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्षामि अनसूयवे. अर्जुन तुम ये ज्ञान समझ सकते हो, गीता एक बार सुनने के बाद तुम तुरंत समझ गए, क्योंकि तुम्हारे हृदय में असूया नहीं है. जिसके हृदय में असूया है, जितना भी भागवतम सुने, जिस हमसे अगर ज्यादा गुणवान व्यक्ति सामने आए तो उससे हम ईर्ष्या करने लगते हैं, उनकी निंदा करने लगते हैं, और जो हमारे समान है उनके सामने हमारा बड़प्पन दिखाते हैं कि मैंने भी ऐसा किया, मैंने भी ये किया. और हमसे जो निम्न श्रेणी पर हैं उनको डांटते हैं, फटकारते हैं उनको. तो बोले अगर मन विचलित होने से बचना है, सुखी रहना है, ये तरीका है. तो ये दूसरा कहना था उनको. तुमने भले मांसाहार छोड़ दिया होगा पर तुम्हारे मुंह को कत्तल खाना बना दिया तुमने, काट काट के तकलीफ दे रहे हो। और फिर भागवतम कैसे समझ में आएगा तुमको, समझ नहीं पाओगे। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, कृष्ण आदान प्रदान नहीं करेंगे भक्तों को, दुख दोगे तो। और कहे अगर समझ लीजिए कोई बहुत बड़ा आदमी है जिससे आप मिलने का प्रयास कर रहे हो, अरे उसका कांटेक्ट हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा, कांटेक्ट हो जाएगा, कोई कांटेक्ट दे रहा है, और वो व्यक्ति आपको फोन करके कहता है कल सुबह 8 बजे मैं तेरे को अपॉइंटमेंट दे रहा हूं, आजा मेरे घर 1 घंटे के लिए हम लोग बैठते हैं, आप जाओगे कि नहीं? 7:30 बजे ही पहुंच जाओगे या शायद पिछले रात को ही जाके चटाई डाल के वहीं बैठ जाओगे। इतने सालों से अपॉइंटमेंट चाहिए था। महाराज जी का कहना था जब तुम हरि नाम ले रहे हो, बोले 3 तरीका है भगवान के साथ अपॉइंटमेंट लेने का। डायरेक्टली कृष्ण के साथ अपॉइंटमेंट, पहला जब कृष्ण का नाम ले रहे हो, अभिन्नत्वात् नाम नामेनो, डायरेक्टली भगवान के साथ बातचीत, अपॉइंटमेंट, आए हैं खुद आपके जिह्वा पर खड़े होकर नाचने के लिए, तो उस समय थोड़ा ध्यान पूर्वक उस संग का लाभ लो, अनन्य भाव से, इधर उधर मन नहीं जाए, बस अभी नाम लेने का है, भगवान मैं और भगवान, भगवान और मैं। दूसरा कहते हैं कि वैष्णव सेवा, यह भी एक तरीका है भगवान के संपर्क में आने का। और तीसरा वो कहते थे भागवतम का अध्ययन। भागवतम का अध्ययन मतलब डायरेक्टली भगवान के साथ हमारा संपर्क। तो इस समय इसको थोड़ा गंभीरता से लो। उनसे एक बार पूछा गया, महाराज आपके स्थिरता, आपकी गंभीरता भक्ति में, आपने काफी समय के बाद भक्ति में आए आप, प्रभुपाद जी तो 1973 में मिले, उम्र हो चुका था आपका फिर वानप्रस्थ के समय में, फिर इतना प्रगति आप कैसे किए, ये रहस्य क्या है आपका? तो बोले भागवतम 1:6:26, पहला स्कंद 6:26, इसे ज्यादा नहीं बोलूंगा ताकि आप लोग आज जाके भागवतम पढ़े। बोले ये श्लोक मेरे प्रगति का रहस्य है, बड़े नम्रता पूर्वक बोले। जहां व्यास देव नारद मुनि से पूछ रहे हैं, आप भक्ति वेदांतों से मिले, भक्ति वेदांतों से आपने शिक्षा ग्रहण की 4 महीना चतुर्मास, फिर भक्ति वेदांत चले गए, चले जाने के बाद आप तो 5 साल की उम्र में आपने क्या किया जिसके द्वारा आप नारद मुनि बन गए, भगवान के नित्य पार्षद बन गए, एक ही जीवन में शूद्रानी के पुत्र से नारद मुनि एक ही जीवन में आप कैसे बन गए, इसका रहस्य क्या है? तो नारद मुनि ने उत्तर दिया, ये रहस्य है। पहला स्कंद 6:26 नामानि अनंतस्य हतत्रपः पठन, गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन, गाम पर्यटन तुष्ट मना गतस्प्रह, कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरः। इसको मैं विस्तृत रूप से नहीं बोलूंगा, नहीं तो आप पढ़ेंगे नहीं भागवतम। तो आपको अगर गंभीरता से प्रगति करना है, इसी जीवन में शुद्ध भक्ति करनी है, भगवान के संपर्क में आना है, तो इस श्लोक को कम से कम कंठस्थ कीजिए और प्रयास कीजिए, इसको जीवन, इसके तात्पर्य को जरूर पढ़िएगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, दिस इज द लाइफ ऑफ ए सिंसियर डिवोटी इन ए नटशेल। एक प्रामाणिक भक्त का लक्षण यही है। उनके जितने सारे शिष्य हैं सबको उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दिया था, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। उनके शिष्य जो उनके संपर्क में आए हो नहीं आए हो, सबके लिए एक ही इंस्ट्रक्शन था। बोले हमेशा तुम्हारे पास एक भागवतम रखो, एक छोटा भागवतम रखो। अभी इंग्लिश में तो एक छोटा छोटा वाला भी आता है ना, कुछ भक्तों ने उसको भागवतम को निकाल के एक एक अध्याय को भी उन्होंने स्टेपल करके कवर करके हमेशा पर्स में रख के जाते। एक सेट उन्होंने खास उसके लिए खरीदा, उसको एक एक अध्याय को भी बना के हमेशा जेब में रखते हैं, वो अपने पर्स में रखते हैं। जब भी समय मिला, अरे बस नहीं आया, अभी कितना माइंड बाकी है, 20 मिनट बाकी है बस के लिए, भागवतम बैठे कभी भी समय मिला तो एक श्लोक पढ़ो, उसको आस्वादन करो, सिर्फ रस का आस्वादन करो उस श्लोक में। एक एक भक्तों के हृदय से निकली हुई प्रार्थनाएं, एक एक सुंदर भक्तों का वर्णन, उनके नाम, उनके गुण, उनके रूप, उनके लीलाओं का वर्णन भगवान के, कंठस्थ हो जाना चाहिए हमको। कंठस्थ नहीं तो कोई और बोला तो तुरंत हमको याद आना, हाँ मालूम है मुझे ये श्लोक वो श्लोक। ऐसा हमको भागवतम अध्ययन करना चाहिए। मैंने महाराज जी का प्रवचन 1993 में सुना था, मैं 93 में, पर एक हफ्ते पहले जब उनके शिष्यों के मुख से ये जब मैं सुना, मुझे इतनी प्रेरणा मिली, तब से मैंने निर्णय किया कि कम से कम कुछ भी, अगर पूरे दिन बहुत बिजी रहा, कुछ फेस्टिवल वेस्टिवल हो गया, फिर भी सोने से पहले, आधे मतलब गिरने से कम एक श्लोक और उसका अनुवाद तो पढ़ूंगा। समय कम है तो छोटा अनुवाद वाला श्लोक ले लो, 3 पन्ने वाला अनुवाद मत लो, तकलीफ हो जाएगा अगर तात्पर्य है तो, पर कम से कम करो। पर ऐसा होता है, एक बार उठा लिया ना वो पढ़ा तो नेक्स्ट श्लोक, फिर अगला श्लोक, अगला श्लोक, करते करते 20 मिनट कैसे चला जाता समझ में नहीं आता। इसका आश्रय लेना एक्चुअली भागवतम का। तो आप सबसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि ये जो मुझे प्रेरणा मिली और ये जो मैंने एक वचन तो नहीं कहूंगा, एक प्रण या एक रेजोल्यूशन, निश्चय, जो निश्चय मैंने किया है, उसमें लगे रहने के लिए और प्रगति करने के लिए आप मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना कीजिए। कुछ अच्छे चीज का अगर प्रण लेते हैं हम लोग, निश्चय करते हैं तो अच्छा है, करेंगे तो अच्छा है। मेरी इच्छा है कि भागवतम ऐसे पढ़ते रहे, आस्वादन करते रहे, न केवल, और एक बार आस्वादन करेंगे तो फिर स्वाभाविक रूप से हमको इच्छा होगी। आध्यात्मिक खासियत यह है आध्यात्मिक जीवन का कि जितना आप जितना आप आध्यात्मिक रस का आस्वादन करेंगे उतना आपका हृदय मृदु बन जाएगा और उतना आपकी इच्छा हृदय में होगी बांटने की। भौतिक संसार का सुख और आध्यात्मिक सुख, इसमें अंतर क्या है? भौतिक सुख जब आदमी भोगता है तो हृदय कठोर बन जाता है, उस सुख के लिए किसी को भी कोई तकलीफ देने के लिए तैयार हो जाता है। मेरे जिह्वा के सुख के लिए मैं कोई प्राणी को काट काट के खा जाऊंगा अगर मेरे जिह्वा को सुख मिलती है तो। भौतिक सुख भोगने से हृदय कठोर हो जाता है, दूसरों का तकलीफ हमें समझ नहीं आता है, अपने सुख के लिए हम किसी को भी कुछ भी करने के लिए तैयार है, समस्या में डालने के लिए, तकलीफ देने के लिए। पर आध्यात्मिक आनंद ऐसा है, जितना इसका आस्वादन करेंगे आपका हृदय मुलायम हो जाएगा, आपको लगेगा वाह कितना आनंद है इसमें, क्या आनंद मैं ग्रहण कर रहा हूं। बेचारे दुनिया के लोगों को इसको मालूम ही नहीं है, यहां भंडार खुला हुआ है और वो भिखारी जैसे घूम रहे हैं, करोड़पति भी भिखारी है उधर, क्योंकि उसको कृष्ण नामामृत, कृष्ण कथामृत, इस अमृत का आस्वादन नहीं मिल रहा उन लोगों को। तो स्वाभाविक रूप से श्रवण करने का और उतारने का लक्षण यह है, हमको इच्छा होगी दूसरों को देने के लिए। मुझे विश्वास है कोल्हापुर में बहुत लोग आस्वादन कर रहे हैं, इसका सबूत क्या है? इसका सबूत यह है कि इस बार मैराथन में मैं पूछ रहा था सागर प्रभु से, क्या समाचार है, कितने पुस्तक? बोले 4832 भगवत गीता ऑलरेडी गया है, ऑफ कोर्स वापस नहीं आना चाहिए। बोले पिछले साल से 3 गुना ज्यादा इस बार गया। बोले इसका मतलब सब लोग आस्वादन कर रहे हैं निश्चित रूप से, नहीं तो जाएगा नहीं। जब दूसरों को देने की इच्छा होती है इसका मतलब भक्ति हमारे हृदय में थोड़ा बहुत लेश मात्र है। भगवान का प्रेम जो है, भगवान के प्रति शरणागति, भक्तों के प्रति मैत्री और जीवों के प्रति दया, ये मध्यम अधिकारी का लक्षण है। ईश्वरे तद अधीनेशु बालिशेशु दुषच्छु च प्रेम मैत्री कृपा। भगवान से प्रेम, भक्तों से मैत्री और जन साधारण के प्रति कृपा। अगर ये बढ़ रहा है इसका मतलब कृष्ण प्रेम बढ़ रहा है हमारे हृदय में। तो ये सूचक है, ये स्कोर जो है, तो हमने इसको नित्यानंद त्रयोदशी यानी फरवरी 16 तक बढ़ाया दिसंबर मैराथन को। ये हमारा दिव्य मैराथन है, इसको जितना चाहे खींच सकते हैं हम लोग। तो बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं सारे कोल्हापुर के भक्त समाज की ओर से, आप सब भक्तों को आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोगों ने न केवल इसका आस्वादन कर रहे हैं आप लोग, बल्कि आप दूसरों को भी दे रहे हो ताकि ये वैष्णव परिवार और बढ़े। जितना बढ़ता है उतना आनंद बढ़ता है, उतना विस्तृत होते जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य महाविष्णु स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदी।